ધવલા પુસ્તક તેરવી લેક્ચર નંબર 20 ઓમ નમઃ સિદ્ધેભ્ય ઓમ નમઃ સિદ્ધેભ્ય ઓમ નમઃ સિદ્ધેભ્ય ઓમ શુદ્ધાત્મને નમઃ નમો અરિહંતાણં નમો સિદ્ધાણં નમો આયરિયાણં નમો વૈછાયાણં નમો લોયે સૌવસાહૂણં મુનિસો વયજિનવસહં સૌવયપુણ્યવસઃ સંતો आचार्य श्री भीमसेन स्वामी रचित यह धवला नामक टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबलि आचार्य। इसमें जो पांचवा खंड है उसका नाम है वर्गणा खंड और उसका कर्मानुयोग द्वार हम देख रहे थे। अब इस 13वीं पुस्तक के पृष्ठ संख्या 151 पर हम आ गए, 151। अभी फोन आया है? ओहो, उनका फोन बंद हो गया। हेलो हेलो, हाँ हेलो, शुरू हो गया। अभी हम आगे बढ़ते हैं। देखो, यहाँ हम अंतर की बात देख रहे थे। इन जो कर्म जो है छह प्रकार के हमने देखे थे, मार्गणाओं में हम देख रहे थे। योग मार्गणा का हमने आरंभ किया था और औदारिक मिश्र का योगियों में अभी देखने जा रहे हैं। यहाँ चौथी लाइन है, नया पैराग्राफ, वहां से पढ़ेंगे। औदारिक हेलो, औदारिक मिश्र काय योगी के प्रयोग कर्म और समवधान कर्म का नाना और एक जीव की अपेक्षा अंतरकाल नहीं है। अधः कर्म का अंतरकाल कितना है? नाना जीवों की अपेक्षा अंतरकाल नहीं, क्योंकि औदारिक मिश्र वाले तो हमेशा जीव पाए जाएंगे। एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतरकाल एक समय, जो सर्वत्र हमने देखा था, और उत्कृष्ट अंतरकाल तीन समय कम अंतर्मूर्त, यानी उनकी औदारिक, एक जीव औदारिक मिश्र लगातार रहता है तो कहते हैं अपर्याप्त में से मरकर अपर्याप्त होता रहता है, और वो भी रुजुगति से, फिर भी वो अंतर्मूर्त है। यथा एक सर्वार सिद्धि विमानवासी देव रुजुगति से आकर मनुष्यों में उत्पन्न हुआ, वहां उपपाद योग से प्रथम समय में जो नौकर्म स्कंध ग्रहण किए, उनके दूसरे समय में निर्जीर्ण होने पर अधक कर्म की आदि होती है, अनंतर तीसरे समय से लेकर अंतर होकर, अनंतर होकर लिखा है, वो अंतर होकर न निकालो, पुनः दीर्घ अंतर्मूर्त के द्वारा प्राप्त होगा। इस प्रकार उसके अंतिम समय में अंतर प्राप्त होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो दीर्घ लिया, नहीं समझे। लगातार औदारिक मिश्र में रहेंगे, लब्धि पर्याप्तम के भव, उससे भी सर्वार सिद्धि में से जो मनुष्य में आकर उसके छह पर्याप्ति पूरी होती है, उसका काल बड़ा है, है ना? हाँ, उसको लिया। इसलिए मैंने वही सोचा कि सर्वार सिद्धि से आया हुआ क्यों लिया। सर्वार सिद्धि से जो आता है उसके औदारिक मिश्र का काल बड़ा है, उसको पर्याप्ति पूरी होने में बहुत टाइम लगता है, हमने देखा है नरक से आने वाले जो जल्दी जल्दी पर्याप्ति पूरी होती है, और सर्वार्थ सिद्धि से आने वाले उसको मैक्सिमम बड़ा काल लगता है उसके लिए औदारिक मिश्र का। मैं तो सोच रही थी कि लगातार लब्धि अपर्याप्त के भाव, इस प्रकार अधक कर्म का उत्कृष्ट अंतरकाल तीन समय का मंत्रमूर्त होता है। इरियापद कर्म और तप कर्म का अंतरकाल कितना है? नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य अंतरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अंतरकाल वर्ष पृथक्व है। नाना जीवों की अपेक्षा ने श्रेणी का अंतर लेना है यहाँ पर। इरियापद का है, तप कर्म का भी लिया तो यहाँ कहते कि ये प्रश्न ये है कि क्षपक श्रेणी में भी तो इरियापद होता है और क्षपक श्रेणी का अंतर तो 6 महीना है और यहाँ वर्ष पृथक तो कहा है। ख्याल में आती बात, यानी औदारिक मिश्र रहते हुए की बात चल रही नहीं यहाँ पर। औदारिक मिश्र में औदारिक मिश्र की बात चल रही है अभी तक। हाँ तो औदारिक कपाट समुद्घात में होगा इरियापद। नाना जीवों की अपेक्षा अंतर की बात चल रही है, एक समय के अंतर से भी हो सकता है ना, और उत्कृष्ट अंतरकाल, उत्कृष्ट अंतर का काल नहीं अंतर, उत्कृष्ट काल तो संख्या समय देखा था, यानी बहुत काल तक कोई भी समुद्घात नहीं करेगा, क्योंकि क्षपक श्रेणी का अंतर भले 6 महीना है परंतु समुद्घात केवलियों का अंतर इतना लंबा हो सकता है। देखो यहाँ प्रश्न पूछा है, जिस प्रकार मोक्ष को जाने वाले जीवों का 6 महीना उत्कृष्ट अंतर होता है, उसी प्रकार केवली समुद्घात करने वालों का भी 6 महीना प्रमाण उत्कृष्ट अंतर क्यों नहीं होता, यह प्रश्न है। क्योंकि अगर 12वें गुणस्थान की अपेक्षा बात करेंगे, देखो अंतर नहीं होता वो तो हमने देखा था 13वें की अपेक्षा, पर अंतर होता है वहां इसकी ये बात लेनी है। औदारिक मिश्र की बात है ना, 13वां गुणस्थान कायम है परंतु औदारिक मिश्र तो एक समय के लिए होता है, चढ़ते समय उतरते समय, तो उसमें अंतर कैसे गिनना, यहाँ तो उसने किया ही नहीं। तो कहते यह कोई दोष नहीं है, यानी यहाँ 6 महीना क्यों नहीं लिया, वर्ष पृथक तो क्यों लिया, ये प्रश्न है। औदारिक मिश्र तो 13वें में जो है 13वें गुणस्थान में है, तो 13वें गुणस्थान में जो हमने देखा ना मोक्ष जाने वालों का अंतर, जो 14वें का अंतर कहो या क्षपक श्रेणी का अंतर कहो, उतना तो बनता है। तो कहते कि मोक्ष जाने वाले सभी जीवों के केवली समुद्घात नहीं होता, हमने वो देखा था कि जिसके वो दोनों कर्मों में बहुत लंबा जो गैप होगा, कौन से, अन्य तीन अघाती कर्म और आयु कर्म, तो उसकी स्थिति समान होने के लिए ये होता है। वैसे तो अंतर्मूर्त के बाद में भी कांडघात होते रहते हैं, तो हर जीवों के लिए वो समुद्घात जरूरी नहीं है। यदि मोक्ष जाने वाले सभी जीवों के केवली समुद्घात होता तो 6 मास प्रमाण अंतरकाल भी प्राप्त होता। इसी से सिद्ध होता है ना कि वो सभी जीव नहीं करते। अब शंका पूछते हैं, जिन जीवों के केवली समुद्घात नहीं होता उनके केवली समुद्घात हुए बिना पल्ले के असंख्यात वे भाग प्रमाण स्थिति का घात कैसे होता है? उसका उत्तर नहीं, क्योंकि स्थिति कांडक घात के द्वारा उक्त स्थिति का घात बन जाता है। क्या कहना चाहते हैं, देखो केवली समुद्घात में एक एक समय में एक एक स्थिति कांडक घात होता है, और जो समुद्घात नहीं करता है उसके भी तो स्थिति कांडक घात होते हैं, पर अंतर्मूर्त में होते हैं, अंतर्मूर्त के द्वारा उतना घात हो जाता है उनका। उक्त दोनों कर्मों का, यानी इरियापथ और तप कर्म का, एक जीव की अपेक्षा अंतरकाल नहीं। देखो अभी हमने जो अंतर देखा वो नाना जीवों की अपेक्षा देखा था, एक जीव की अपेक्षा अंतरकाल नहीं है। क्रिया कर्म का, क्योंकि देखो कपाट समुदायक में इरियापत है और वो होता ही एक समय के लिए। आप कहेंगे वापस फिर दोबारा आता है, पर दोबारा आता है तब तक बीच में मिश्र का योग नहीं होता है, कर्मण का योग हो जाता है। क्रिया कर्म का अंतरकाल कितना है? औदारिक मिश्र में क्रिया कर्म का अंतरकाल होगा कि नहीं होगा? नाना जीवन की अपेक्षा तो होगा, एक युग की अपेक्षा होगा कि नहीं होगा? क्रिया कर्म किसको होगा? सम्यक दृष्टि के, सम्यक दृष्टि को। तो औदारिक मिश्र में सम्यक तो से मान लेते वो नीचे आया और फिर दोबारा प्राप्त किया, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं होगा। देखो तो क्रिया कर्म का अंतरकाल कितना है? नाना जीवन की अपेक्षा जघन्य अंतरकाल एक समय है। एक समय कैसे? कोई जो औदारिक मिश्र में है ना, मनुष्य तिर्यंच में, तिर्यंच में वो जाने वाले क्षायिक वाले हो गए, उत्पन्न हुए सम्यक्त्व के साथ और फिर औदारिक मिश्र से औदारिक हो गया और फिर एक समय के लिए कोई नहीं आया उसमें, तो अंतर हुआ एक जघन्य अंतर। और उत्कृष्ट अंतर काल वर्ष पृथक्त्व है, यानी पृथक्त्व वर्ष में कोई ना कोई मनुष्य सम्यक दृष्टि जन्मेगा ही जन्मेगा। क्रियाकर्म में कौन सी बात है आप? अच्छा हाँ, नहीं हम अभी क्रियाकर्म की बात देख रहे हैं। तो उत्कृष्ट अंतरकाल वर्ष पृथक्त्व है, एक जीव की अपेक्षा अंतरकाल नहीं है। समझ में आई ये बात? एक जीव की अपेक्षा अंतर क्यों नहीं है? औदारिक मिश्र अवस्था में मिथ्यात्व में जाया फिर ऊपर समय तो प्राप्त किए, ऐसे तो बात कभी होगी नहीं, अंतर घटित करना है। इसी प्रकार कार्मण का योगियों के जानना चाहिए, इतनी विशेषता है कि अधक कर्म का नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य अंतरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अंतरकाल वर्ष पृथक्त्व है। आप बताएंगे लक्ष्मी अधक कर्म का अंतर कैसे लेंगे? कार्मण का योग है पहले में, पहले कार्मण का योग में अधक कर्म कैसे होगा? पहले पहले ये मेरा प्रश्न है। कार्मण विग्रह गति में तो औदारिक शरीर ही नहीं है, तो औदारिक यानी अधक कर्म होने का सवाल नहीं है, परंतु समुद्घात में कार्मण का युग रहते हुए अधक कर्म शरीर के परमाणु के छूटने की बात तो चल ही रही है। तो कहते वहां पर भी प्रतर लोकपुरण और फिर प्रतर, हाँ तीन समय है। तो वो छोड़ा फिर वो उस रूप से रहा फिर वो अंतर हुआ फिर ग्रहण किया, इतने समय कहाँ है? तीन समयों में तो अंतर घटित ही नहीं होगा। नहीं समझे? फिर से हम कैसे कहीं पर भी अधक कर्म का उत्कृष्ट अंतर कैसे देखते हैं? उसकी जो काय स्थिति है यानी उसमें रहने का काल, उस मार्गणा में रहने का काल, तो पहले समय में औदारिक शरीर ग्रहण किया और दूसरे समय में निर्जरा हुए और तीसरे समय में अंतर किया, एक समय के लिए उस रूप से रहना चाहिए एक्चुअली। तो तीसरे समय में अंतर किया यानी पहले दो समय और फिर अंतर करने के बाद फिर ग्रहण किया, चौथे समय में ग्रहण कर सकता है तो एक समय का अंतर होगा। पर यहाँ तो तीन ही समय है ना, चार समय ही नहीं है, इसलिए अंतर घटित नहीं होगा। हाँ अभी एक समय जो अंतर है यानी किसी ने केवली समुद्घात करके फिर लौटा, कार्मण काय उसका कार्मण काय प्लस अधक कर्म चाहिए, कार्मण काय प्लस अधक कर्म विग्रह गति में तो हो ही नहीं सकता, वो केवली समुद्घात में ही हो सकता है। तो एक समय के अंतर से किसी ने केवली समुद्घात किया यानी उसमें अधक कर्म हुआ। ऐसा ही अनेक समय ने अभी हमने जो ऊपर देखा था ना कि यहाँ वर्ष पृथक को अंतर बताया था इरियापथ में, वैसा यहाँ पर भी होगा। एक समय के लिए किसी ने किया नहीं और अधिक से अधिक अंतर वर्ष पृथक के बाद कोई करेगा ही करेगा केवली समुद्र। हम देखे ना जैसे श्रेणी का उत्कृष्ट अंतर 6 महीना होता है, परंतु केवली समुद्घात का उत्कृष्ट अंतर वर्ष पृथक होता है। वो तो वर्ष पृथक बस इतना ही कहते हैं, 3 से 8 कुछ यूजुअली 3 से 8 वर्ष कहते हैं, पर ये वर्ष पृथक के लिए उन्होंने कोई ऐसी संख्या बताई नहीं है। एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है। इसी प्रकार नहीं ये हो गया ना वैकृत का योगियों के मिला ना, सब पदों का अंतर काल नहीं है। वैकृत का योग में कौन कौन से पद होते हैं तेजन? प्रयोग, समवदान और क्रियाकर्म। तो वैकृत का योग एक ही योग रहते हुए, योग का काल इतना है कि उसी योग में रहते हुए नीचे के गुणस्थान में आया और फिर सम्यक तो प्राप्त किया, ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि योग उसमें कितनी बार पलटेगा, योग का काल बहुत छोटा है। इसलिए कहते वैकृत का योगियों के सब पदों का अंतरकाल नहीं है, ना नाना जीवों की अपेक्षा ना एक जीव की अपेक्षा। वैकृत मिश्र का योगियों के, अब वैकृत मिश्र का योग ये सांतर मार्गणा है, तो नाना जीवों की अपेक्षा अंतर पड़ेगा। प्रयोग कर्म और समवदान कर्म का अंतरकाल कितना है? कहते नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य अंतरकाल एक समय, यानी कोई वैकृत मिश्र में आया रहा और फिर कायोगी होगा, वैकृत कायोगी, एक समय के लिए कोई नहीं आया उसमें, जीव जन्मा नहीं, फिर वहां जन्म लिया देव या नरके में। तो नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य अंतरकाल एक समय और उत्कृष्ट अंतरकाल 12 मुहूर्त है। ये वैकृत मिश्र का अंतर है। हम अगर देव और नारकी का देखते हैं तो उसमें 24 मुहूर्त होता है, अकेला अकेले देव का और अकेले नरक में जन्मने वालों का, परंतु दोनों को मिलाकर 12 मुहूर्त का अंतर होता है। एक जीव की अपेक्षा अंतरकाल नहीं है, क्यों? जो वैकृत मिश्र में आया है वो अंतर मुहूर्त रहकर ही आगे चलेगा, तो उसमें प्रयोग कर्म समवदान कर्म का कोई अंतर नहीं होगा। क्रिया कर्म का अंतरकाल कितना है? नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य अंतरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अंतरकाल मास पृथक्त्व है। इसका अर्थ क्या है? सम्यक्त्व के साथ वहां जन्मने चाहिए, वो मास पृथक्त्व लिया, और औदारिक मिश्र में लिया था वर्ष पृथक्त्व और यहाँ लिया मास पृथक्त्व। कोई सम्यक्त्व के साथ देव में जाएगा ही जाएगा, नरक में जा सकता है, पर वो तो नरक में तो क्षायिक वाला जाएगा सम्यक्त्व लेकर, तो कितने वर्ष पृथक्त्व का अंतर तो पड़ेगा। एक जीव की अपेक्षा अंतरकाल नहीं है, क्योंकि वैकृत मिश्र अवस्था में ऐसा नहीं कि वहां जाके उसने सम्यक्त्व प्राप्त किया। ये हो सकता है कि द्वितीयोपशम वाला सासाधन में आ जावे, क्रिया कर्म वाले का छूट जावे क्रिया कर्म, पर फिर दोबारा प्राप्त नहीं हो सकता है उसको, इसलिए अंतर तो घटित होगा ही नहीं। आहारक कायोगी और आहारक मिश्र कायोगी जीवों के सब पदों का नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य अंतर काल एक समय। आहारक यानी किसी जीव ने आहारक शरीर बनाया नहीं है, तो एक समय का अंतर होगा, और उत्कृष्ट अंतरकाल वर्ष पृथक्त्व है, यानी पृथक्त्व वर्ष तक कोई आहारक कायोगी हुए नहीं, किसी मुनि ने आहारक शरीर बनाए नहीं, ये हो सकता है, अंतर की बात है। नाना जीवों की अपेक्षा अंतर, एक जीव की अपेक्षा अंतरकाल नहीं है, क्योंकि जो जीव औदारिक मिश्र में आया तो उसका वो काल उतना होगा, उसमें कुछ अन्य अन्य प्रयोग कर्म समवदान कर्म इन कर्मों का कोई अंतर ही नहीं है। आहारक मिश्र में भी कोई सवाल ही नहीं उसका अंतर होने का, आहारक कायोग में भी।
यानी इसका अर्थ ऐसा लेना कि आहारक कायोगी कोई ना कोई होता ही होता है।
हाँ, आहारक होता ही होता है, पर वर्ष पृथक्त्व के अंतर से मैक्सिमम होगा, इतना अंतर पड़ सकता है।
यहाँ जो लिख रहे एक जीव की अपेक्षा अंतरकाल नहीं,
एक जीव की अपेक्षा जब एक जीव ने आहारक शरीर बनाया तो उसका आहारक मिश्र का जो काल है उसमें इन कर्मों का अंतर होके वापस वो कर्म हो जावे, ऐसा नहीं होता। जैसे प्रयोग कर्म और समवदान किसी में भी उसका अंतर नहीं होता, और यहाँ दूसरे आहार काय योग वाले के कौन कौन से कर्म हो गए पहले ये नक्की करो। लक्ष्मी आप बताना, आहार काय योगियों में कौन कौन से कर्म हो गए? प्रयोग कर्म, समवदान, क्रिया कर्म होगा, अध कर्म होगा, तप कर्म होगा, क्यों नहीं होगा? अरे शरीर के परमाणु जा रहे हैं ना। आहारक में एरिया कैसे होगा? वो 11वें 12वें में होता है, यानी एरिया छोड़कर बाकी सब हो गए, उनका अंतर नहीं होगा। अब वेद मार्गणा के अनुवाद से स्त्री वेद वालों के, तो स्त्री वेद वालों में कौन कौन हो गए कर्म, कौन सा नहीं होगा ये बताओ। हाँ ईर्ष्यापत नहीं होगा, क्योंकि तब तक तो अवेदी हो जाते हैं ना, अपगत वेदी हो जाते हैं, बाकी तप कर्म वगैरह हाँ सभी में यही होगा। वेद वालों के कोई ईर्ष्यापत नहीं होगा, है ना। वेद मार्गणा के अनुवाद से स्त्री वेद वालों के प्रयोग कर्म और समवदान कर्म का नाना जीवों और एक जीव की अपेक्षा अंतरकाल नहीं है, अने हमेशा ही स्त्री वेद में जीव रहेंगे, और स्त्री वेद में रहते हुए उसको वो प्रयोग कर्म या समवदान रुक गया और फिर वापस हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। अधक कर्म का अंतरकाल कितना है? नाना जीवों की अपेक्षा अंतरकाल नहीं है, क्योंकि स्त्री वेद में जीव भी रहेंगे, उनके अधक कर्म भी चलते रहेंगे। अब एक जीव की अपेक्षा कैसा हम नक्की करेंगे? कहीं पर भी एक समय अंतर होता है, अधिक से अधिक अंतर घटित करने के लिए स्त्री वेद की उत्कृष्ट स्थिति कितनी होती है, काय स्थिति, हाँ तो उसमें 3 समय कम करेंगे हम, तो एक जीव की अपेक्षा, हाँ पेज नहीं है, अरे बाप रे 177 ब्रह्मा की पुस्तक होगी ना, ब्रह्मा की पुस्तक लेके बैठना। तब तक वो पुस्तक देखना। लास्ट टाइम भी उसमें जीरोक्स नहीं, तो तब तक जीरोक्स निकाल के लाना कल। हाँ बुक लेके गई क्या? अच्छा हाँ, अरे फोटो निकाल के ले लो तुम्हारे मोबाइल में, 2 पेज के निकालो और फिर देखो उसमें, तो दोनों को ही होगा। हाँ नहीं नहीं उसमें नहीं मिला ना, आगे नहीं मिला उस। मेरे में भी वो ये पुस्तक में तो कुछ नहीं, एक पुस्तक में नहीं था तो उसमें हमने लिया था। हाँ अब देखते वेद मार्गणा की बात चल रही है अपनी। हाँ निकाले उन्होंने, देखो स्त्री वेद वालों में तो प्रयोग कर्म समावधान का अंतर नहीं हुआ, 153 पेज पर अभी हम देख रहे थे, हमें उसकी उत्कृष्ट स्थिति कितनी है स्त्री वेद वालों की, ये सेकंड लाइन, उत्कृष्ट अंतरकाल मिला क्या आपको? 3 समय कम 100 पल्ले पृथक है। अब तप कर्म का अंतरकाल कितना है, यानी स्त्री वेद के रहते हुए तप कर्म नहीं रहेगा और फिर होना चाहिए, यानी संयम में से असंयमी हुआ वापस संयम प्राप्त किया, तो तप कर्म का अंतरकाल कितना है? नाना जीवों की अपेक्षा अंतरकाल नहीं है, एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतरकाल अंतर्मूर्त है, और उत्कृष्ट अंतरकाल कुछ कम 100 पल्ले पृथक है। उस कुछ कम 100 पल्ले पृथक, पहली बार वो सम्यक्त्व और संयम प्राप्त किया, फिर मिथ्यात्व में गया और फिर लास्ट में अंतिम काय स्थिति में, वो बता रहे अभी। यथा 28 कर्मों की सत्ता वाला एक पुरुष वेदी या नपुसक वेदी जीव स्त्री वेद वाले मनुष्यों में उत्पन्न हुआ, क्या कहते हैं, संयम धारण करना है और स्त्री वेद का पहला भव लेना है, इसलिए उसको लाया नपुसक वेद या पुरुष वेद में से, गर्भ से लेकर अंतर्मूर्त अधिक 8 वर्ष का होने पर वेदक सम्यक्त्व और संयम को एक साथ प्राप्त हुआ, क्योंकि 28 की सत्ता वाला लिया ना, इसलिए इसके तप कर्म की आदि दिखाई दी। अनंतर सबसे लघु अंतर्मूर्त काल तक तप कर्म के साथ रहकर मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ और उसका अंतर किया। अनंतर सौ पल्ल पृथक्त्व में सबसे जघन्य अंतर्मूर्त काल शेष रहने पर उपशम सम्यक्त्व और संयम को एक साथ प्राप्त हुआ। देख, सौ पल्ल पृथक्त्व यानी सैकड़ों पल्ल, अरे पल्ले के असंख्यात भाग में उसका तो वेदक योग्य काल समाप्त हो जाता है, उसको उपशम करना पड़ता है, तो इतने काल के बाद उसको औपशमिक ही करना है। औपशमिक करके सासाधन में से भेज देंगे उसको दूसरे भाव में यानी अन्य वेद में। तो कहते हैं कि सौ पल्ले पृथक्त्व में सबसे जघन्य अंतर्मूर्त काल शेष रहने पर उपशम सम्यक्त्व और संयम को एक साथ प्राप्त हुआ, इसके तप कर्म का अंतर काल लब्ध हो गया यानी उत्कृष्ट अंतर। और उपशम सम्यक्त्व के काल में एक समय शेष रहने पर सासाधन गुणस्थान को प्राप्त होकर मरा और पुरुष वेद वाला देव हुआ। देखो शुरुआत में मरने वाले देव में जाएंगे ना, और देखो देव ही क्यों हुआ, प्रेरणा भी ना बताएंगे देव में क्यों, दूसरा भी कुछ हो सकता है, और एक समय में मरने की आवश्यकता भी नहीं थी ना। पर सासाधन में कहीं पर नरक के बाद देव है, तिरियंच है, मनुष्य है। देखो आयु तो पहली बांधी थी, तो आयु अगर दूसरी बांधते तो संयम नहीं प्राप्त करते, नहीं समझे? देखो उन्होंने आयु तो पहली बांधी थी, नक्की है। अब कोई मनुष्य और तिरियंच की आयु बांधता सम्यक तो हो सकता था, उसके पांचवा भी गुणस्थान नहीं होता, ये तो संयम ही हुए, सातवें गुणस्थान में गए, इसलिए देव हुआ। क्योंकि संयम में मरण हुआ है तो संयम धारण किया है, मरण हुआ नहीं हुआ वो तो बात अलग है। तो संयमी वे ही हो सकते जिन्होंने देवायु बांधी है।
आपको नियम बताना है यानी बता रही है आपके लिए बोल रहा हूँ कि जो जीव आयु बांधता है मनुष्य की, तिरंज की, कोई भी, तो वो संयम नहीं धारण करता है, और जिसने देव गति के आयु देवायु बांधी है वो संयमी हो सकता है, और जो संयमी है बाद में आयु बांधता है तो देव गति बांधता है।
ये उपशम सम्यक्त में एक ही समय में मरा है ना, बाद में आयु बांधी होगी फिर मरे हो, ये पॉसिबिलिटी भी नहीं रखी वहां पर, क्योंकि और काल बढ़ जाता। सासाधन में देवायु बांध सकता था परंतु उसका काल और बढ़ाना पड़ता, इसलिए पहले आयु बांधी थी, देवायु बांधी थी, और उपशम सम्यक्त और संयम एक साथ प्राप्त किया। संयम प्राप्त किया इसी का अर्थ उन्होंने देवायु ही बांधी थी, है ना। ये अभी मैं सोच रही हूँ ऐसा क्यों दिखा देव क्यों। इस प्रकार गर्भ से लेकर दो अंतर्मूर्त अधिक आठ वर्ष अपनी स्थिति तप कर्म का उत्कृष्ट अंतर काल होता है। अपनी स्थिति यानी स्त्री वेद की अपनी स्थिति, सौ पल्ल पृथक्त्व के दोनों ओर अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त रोज आठ वर्ष। अब क्रिया कर्म का अंतर काल कितना है, नाना जीवों की अपेक्षा अंतरकाल नहीं, यानी स्त्रीवेदी जीवों में हमेशा ही समय दृष्टि पाए जाएंगे। एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतरकाल, अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट अंतरकाल अंतर्मूर्त कम सौ पल्ल पृथक्त्व है। यथा देखो सौ पल्ल पृथक्त्व लिया तो वहां आठ वर्ष की बात नहीं ली, तप कर्म कहना था तो इसलिए पहला भी भव और अंतिम भव भी मनुष्य का लिया, क्योंकि संयम धारण कराना था तप कर्म के लिए। अब क्रिया कर्म के लिए तो स्त्रीवेदी तो तीनों ही गति के ले सकते हम, पर वो समूर्छन तिरियंच नहीं ले सकते क्योंकि वो स्त्रीवेदी नहीं होते, नपुसक वेदी होते हैं। इसलिए कौन रहे अंतर्मूर्त में सम्यक तो प्राप्त करने वाले, देवी। देवी में पहले अंतर्मूर्त के बाद उसने सम्यक तो प्राप्त किया, बाद में ये सभी तीनों में वो घूमती रही और फिर जाके अंत में उसने सम्यक को प्राप्त किया। समझ में आई बात लक्ष्मी? फिर से देखो, अंत अर्लीस्ट सम्यक तो प्राप्त कराना है। मनुष्य में होते तो 8 वर्ष बिताने पड़ते और यहाँ देवी को लिया, क्योंकि तीर्यंचों में भी और मनुष्यों में भी गर्भजों को लेते हैं तो कुछ मास तो उसके तो गर्भ में बिताने पड़ते। आप कहेंगे समूर्छन ले लो, और समूर्छन में तो नपुसक वेदी होते हैं, तो इसलिए कौन रहे भी देवी। तो देवी ने अंतर्मूर्ति के बाद सम्यक तो प्राप्त किया, तो क्रियाकर्म शुरू हुआ, वो छूट गया सम्यक तो अंतर शुरू हुआ। अभी हम पढ़ेंगे यहाँ पर, यथा 28 कर्मों की सत्ता वाला पुरुष वेदी या नपुसक वेदी एक तिर्यंच या मनुष्य देवों में उत्पन्न हुआ। देवों में उत्पन्न ने देवी में उत्पन्न हुआ एक्चुअली। छह पर्याप्तियों से पर्याप्त हुआ, विश्राम किया, विशुद्ध हुआ, वो भी बराबर नहीं दिख रहा है, ये शुद्ध थी, और वेदक सम्यक्त को प्राप्त हुआ। चार अंतर्मूर्त गए ना, छह पर्याप्ति से पर्याप्त, विश्राम, फिर विशुद्धि और फिर सम्यक्त का अंतर्मूर्त। इसके क्रियाकर्म की आदि दिखाई दी, अनंतर मिथ्यात्व को प्राप्त होकर उसका अंतर किया। जब सम्यक तो प्राप्त किया तो क्रियाकर्म की शुरुआत हुई, जब मिथ्यात्व में आया तो अंतर शुरू हुआ। अनंतर यानी उसके पश्चात सौ पल्य पृथक्त्व में सबसे जघन्य अंतर्मूर्त काल शेष रहने पर उपशम सम्यक को प्राप्त हुआ तो क्रियाकर्म का अंतर लब्ध हो गया। अनंतर सासादन गुणस्थान को प्राप्त होकर मरा और पुरुष वेदी या नपुसक वेदी हो गया। यह तो वेद पलटना है, अभी नपुसक वेदी हो गया नहीं, देव में गए थे नहीं कहेंगे, कहीं पर भी जाने दो, तिर्यंच हो या मनुष्य हो। पुरुष वेदी तो तीनों भाव में जा सकता है, नपुसक वेदी तो तिर्यंच मनुष्य में जा, यहाँ वेद पलट गया, बस इतना ही कहना है। इस प्रकार 5 अंतर्मूर्त कम अपनी स्थिति क्रियाकर्म का उत्कृष्ट अंतरकाल होता है। समझ में आ रही बात लक्ष्मी जी? हाँ, नहीं तो बताना, हम स्लोली चले जाएंगे। वो तो लास्ट लास्ट में होता है। सैचुरेट हो जाता है ना, कोई बात नहीं, थोड़ी स्लोली जाएंगे ना। हाँ, तो पुरुष वेद वाले जीवों के, अभी स्त्री वेद वालों की कितनी थी, 100 पल्य पृथक्त्व और ये 100 सागर पृथक्त्व, ये तो उसकी स्थिति हो गई। पुरुष वेद वाले जीवों के प्रयोग कर्म और समवदान कर्म का नाना जीवों और एक जीव की अपेक्षा अंतरकाल नहीं है। किसी भी मार्गणा में प्रयोग कर्म रुक जाए या समवदान और वापस हो जावे, ऐसे नहीं, क्योंकि कर्म से सही तो है ही और योग भी हमेशा है। अधः कर्म का अंतरकाल कितना है, नाना जीवों की अपेक्षा अंतरकाल नहीं है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतरकाल एक समय, यानी वो छोड़ा हुआ औदारिक शरीर का स्कंद है, वो अवदेक भाव से रहित हो गया, फिर वापस उसको ग्रहण किया इस तरह से। और उत्कृष्ट अंतरकाल 3 समय कम 100 सागर पृथक है, उनकी अपनी स्थिति, उसमें 3 समय हमेशा देखा हमने कैसे करना है, पहले समय में ग्रहण किया, दूसरे समय निर्जरा की छोड़ा, अंतर चालू हो गया। तप कर्म का अंतरकाल कितना है, तो कहते हैं नाना जीवों की अपेक्षा अंतरकाल नहीं है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतरकाल अंतर्मूर्त है और उत्कृष्ट अंतरकाल 100 सागर पृथक्त्व है। जैसे हमने स्त्री वेदी में 100 पल्य पृथक्त्व लिया, यहाँ 100 सागर पृथक्त्व लेना। यथा 28 प्रकृतियों की सत्ता वाला एक स्त्री वेदी या नपुसक वेदी जीव पुरुष वेद के साथ मनुष्यों में उत्पन्न हुआ, जैसे हमने स्त्री वेदी में भी देखा था, क्योंकि यहाँ तप कर्म का अंतरकाल करना है ना, इसलिए संयम में उत्पन्न कराना है। वहां गर्भ से लेकर 8 वर्ष का होने पर वेदक सम्यक्त्व और संयम को एक साथ प्राप्त हुआ। इसके तप कर्म की आदि दिखाई दी। अनंतर सबसे थोड़े काल तक तप कर्म के साथ रहकर मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ। मेरे ख्याल से वेदक सम्यक तो को लिया, क्योंकि उसकी प्राप्ति में जल्दी प्राप्त होता है और छोटे अंतर्मूर्ति आपस में बना मिलने के लिए तप कर्म का अंतर किया। तदनंतर सौ सागर पृथक्त्व में सबसे जघन्य अंतर्मूर्त काल शेष रहने पर उपशम सम्यक और संयम को एक साथ प्राप्त हुआ और तप कर्म का अंतर प्राप्त हो गया। अनंतर सासादन गुण स्थान को प्राप्त होकर मरा और स्त्री वेद या नपुसक वेदी हो गया। क्योंकि सासादन में मरकर सही नपुसक वेदी क्यों कहा? स्त्री वेदी में तो ठीक है, देव में गया पर देवी हुआ। जा सकता है, वो संयम के साथ थोड़ी जाएगा। नपुसक वेदी क्यों कहा? क्योंकि जाने के पहले उसी वेद में जाना चाहिए। एक बात, नरक में नहीं जाता। नपुसक वेदी मनुष्य तीर्यंच में उनको बताना था, परंतु मनुष्य वो संयम के साथ मरा है तो मनुष्य तीर्यंच आयु कहां बांधी उसने? तो मनुष्य तीर्यंचों में अगर मरना है तो उसको सासादन में मनुष्य तीर्यंच आयु बांध कर गया, ऐसा कह सकते हम। संयमी हुआ है ना? किया ना लास्ट में भी एक साथ सम्यक तो संयम को प्राप्त हुआ, तब तप कर्म का अंत। तप कर्म का अंत तभी बनेगा जब संयम को ही प्राप्त करेगा। देखो, आप कोई कहेंगे कि बाद में उसने आयु बांधी, सासादन में आयु बांध सकता है, पर सासादन में अगर आयु बांधता है तो नपुसक वेद का बंध नहीं करेगा। नपुसक वेद की बंध विच्छित्ति पहले में हो गई है, नपुसक वेदी यहाँ घटित नहीं हो रहा है। ऊपर भी लिखा है, इत्थि वेदो नऊ से वेदो वा जादो, घटित नहीं होता, क्योंकि संयमी तो संयमी है, आयु पहले बांधी है तो देव में जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि सासादन में आया और देवी हो गया। हाँ, एक ही पॉसिबिलिटी होती है। नहीं, सांसाधन में आयु नहीं, आयु पहले बांधी होगी ना उसने, ये ले सकते हैं। यानी अबद्धायु अगर वो संयम को प्राप्त करता है तो बाद में अगर आयु बांधने के लिए समय जाएगा और फिर आयु बांधने बांधकर रुकेगा, फिर कुछ काल जाएगा, फिर मरेगा, यानी उसका छियावली वाला काल बड़ा लेना पड़ेगा ना। अभी नपुसक वेदी में क्वेश्चन मार्क लगा के रखो, कैसे? हाँ ना, उन्होंने पुरुष वेद का अंतर घटित करने के लिए नपुसक वेदी लिख दिया, परंतु स्त्री वेदी होना चाहिए क्योंकि संयम के साथ मरा है ना, तो नपुसक वेद में कैसे जाएगा? देव में ही जाएगा। संयम में मरा नहीं है, परंतु संयम बद्धायुष का संयमी हुआ है ना, बद्धायुष का संयमी हुआ है तो देव में ही जाएगा, क्योंकि आयु का बंध तो उसने पहले ही होना चाहिए था ना। वो वो ये हो सकता है देवी में गया साधन में आकर। हाँ ये हो सकता है। अभी वो भी एक भी नियम है कि जहां जाना है जिस वेद में उत्पन्न होना है तो अंतर्मुहूर्त तक उसी वेद का बंध भी करेगा। तो सासाधन में आकर उस स्त्रीवेद का तो बंध है वहां पर सासाधन में स्त्रीवेद का बंध है, नपुसक वेद का बंध नहीं है क्योंकि बंध विच्छित्ति हो गई ना पहले में। हाँ उदय हो सकता है पर बंद नहीं है। हाँ देवी होना चाहिए क्योंकि बद्धायुष का बाद में अगर आयु के बांधने के लिए समय बिताना है तो और उसका अंतर कम हो जाएगा। हाँ देखो इस प्रकार गर्भ से लेकर अंतर्मुहूर्त अधिक 8 वर्ष काल से न्यून अपनी स्थिति तप कर्म का उत्कृष्ट अंतर होता है। क्रियाकर्म का अंतरकाल कितना है? नाना जीवों की अपेक्षा अंतरकाल नहीं है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतरकाल अंतर्मुहूर्त है क्योंकि वो क्रिया ने सम्यक तो से नीचे आए। फिर या क्रियाकर्म का अंतर हमने ऐसा भी देखा था पुरुष वेदी है ना, तो क्रियाकर्म का अंतर कब होगा? सातवें के ऊपर ने अपूर्व करण में आया तो क्रियाकर्म का अंतर हुआ, तो अपूर्व करण के निद्रा प्रचला की विच्छित्ति करके मरा और देह में उत्पन्न हुआ तो जघन्य अंतर होता है। और उत्कृष्ट अंतरकाल कुछ कम 100 सागर पृथक्त्व है। यथा 28 प्रकृतियों की सत्ता वाला स्त्रीवेदी या नपुसक वेदी एक जीव मरकर पुरुष वेद के साथ देवों में उत्पन्न हुआ, 6 पर्याप्तियों से पर्याप्त हुआ, विश्राम किया और विशुद्ध होकर वेदक सम्यक्त को प्राप्त हुआ, क्रिया कर्म की आदि दिखाई दी, पुनः अति स्वल्प काल तक क्रिया कर्म के साथ रहकर मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ। यानी पुरुष वेद में आने के पहला अंतर्मुहूर्त, उसमें पहले 3 और 4 अंतर्मुहूर्त गए, अंतर किया तो 4 अंतर्मुहूर्त बीत गए, अनंतर 100 सागर पृथक्त्व में सबसे जघन्य अंतर्मुहूर्त काल शेष रहने पर उपशम सम्यक्त को प्राप्त हुआ, क्रियाकर्म का अंतर प्राप्त हुआ यानी क्रियाकर्म शुरू हुआ अंतर समाप्त हुआ, अनंतर सासाधन गुण स्थान को प्राप्त होकर मरा और स्त्रीवेदी या नपुसक वेदी होगा। यहाँ तो ठीक है क्योंकि क्रियाकर्म कहना है तो सम्यक्त तो पहले तो किसी भी आयु का बंध हो गया है तो सम्यक्त तो प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार 5 अंतर्मुहूर्त कम अपनी स्थिति क्रियाकर्म का उत्कृष्ट अंतरकाल होता है। ये तो यहाँ तो कोई यहाँ क्रियाकर्म है ना, संयमी होते हैं तो बद्धायुष का तो देव ही होने चाहिए। सम्यक तो होने के लिए कोई भी सासाधन में मरना इसलिए नरक का तो बंध नहीं हुआ था, परंतु अन्य 3 गति का बंध हो सकता है और उसको पुरुष वेद से अभी अन्य मनुष्य तीरियंच नपुसक में भी जन्म सकता है और देव में जाना है तो देवी होकर जन्मेगा। उसको पुरुष वेद का काल समाप्त हुआ है बस इतनी। अब नपुसक वेद वाले जीवों के ये हो गया ना सब, हाँ प्रयोग कर्म और समवदान कर्म का नाना जीव और एक जीव की अपेक्षा अंतरकाल नहीं है। अधकर्म का अंतरकाल कितना है? नाना जीवों की अपेक्षा अंतरकाल नहीं है, एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतरकाल 1 समय और उत्कृष्ट अंतरकाल 3 समय कम अनंत काल है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन के बराबर है। चल यानी वो एकेंद्रियों में रहने का यानी औदारिक शरीर के साथ रहने का इतना उत्कृष्ट काल है उसका। शंका, एक पुद्गल परिवर्तन ही उत्कृष्ट अंतरकाल होना चाहिए क्योंकि एक पुद्गल परिवर्तन के बाद उस जीव का वहां रहना संभव नहीं है। यह कोई दोष नहीं, यही प्रश्न आया था ना, एक पुद्गल परिवर्तन में तो दोबारा वो ग्रहण करता ही करता है, तो ये इतने कैसे हो गए, ये प्रश्न था अपना। अब यहाँ उसका उत्तर आता है, यह कोई दोष नहीं है क्योंकि विवक्षित जीव को छोड़कर अन्य जीवों के साथ अधक कर्म रूप से परिणत हुए नौ कर्म स्कंधों का भी अंतर अभाव नहीं होता है ऐसा समझकर असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण मानने में कोई विरोध नहीं आता। यानी वो औदारिक शरीर रूप से जो रहा था वो किसी जीव ने अन्य फिर उसको ग्रहण किया, ऐसा लेना है दूसरे जीव ने किया। हाँ ना, फिर भी उसको ले लिया, बैठता नहीं है क्योंकि वो नाना जीवन की अपेक्षा ही हो गई ना, वैसे फिर भी वो अपेक्षा लगाई उन्होंने, प्रश्न यही से ही पूछा था, क्योंकि एक पुद्गल परिवर्तन में तो अंतर समाप्त तो होना ही चाहिए था और यहाँ तो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन कह रहे। यानी वो जो छोड़े हुए परमाणु किसी अन्य ने ले लिए, बस ऐसा ही ले लिया, वो सबसे सब लेना, वो तो वो कंडीशन ही नहीं उसमें। अधक कर्म में, अधक कर्म में उसने फिर ग्रहण किया, उसमें तो वो पूरा स्कंध पूरा सबके सब पूरा गृहित। वही स्पर्श रस गंध वर्ण वो सब, और उसके कर्म और नौकर्म सब एक साथ होते हैं, कर्म परिवर्तन भी उतना ही होता है, तो कर्म की भी वैसी स्थिति होगी ना उसके। अरे पर उसके कर्म भी वैसे ही होंगे वहां पर, महामत्स्य के लिए जो स्पर्श रस गंध योग्य परमाणु है वो चीटी के थोड़ी वैसे स्पर्श रस गंध वर्ण वाले हो गए। ख्याल में आती है, वो पर्याय भी वैसी होनी चाहिए। यहाँ लिया ना अन्य जीव की अपेक्षा, इसको बता दिया। तप कर्म और क्रिया कर्म का अंतरकाल कितना है नपुसक वेद वालों में? नाना जीवों की अपेक्षा अंतरकाल नहीं है, एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतरकाल अंतर्मूर्त है और उत्कृष्ट अंतरकाल उपार्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है, कुछ कम अर्ध पुद्गल। हमने देखा पहले भव में जब उन्होंने सम्यक तो प्राप्त किया था या तप संयम धारण किया था तो नपुसक वेदी था वो जीव, और फिर अंतिम में जो तप कर्म के लिए भी संयम ही हुआ वो नपुसक वेद वाला, इस तरह से लेना चाहिए। पर नपुसक वेद वाला अगर संयमी होता है तो उसका और एक भव कराना चाहिए। अनंत पुद्गल परावर्तन हो जाए तो जाके एक क्षेत्र परावर्तन होगा, अनंत असंख्यात पुद्गल परिवर्तन लिया, अन्य परिवर्तनों की बात ही नहीं है, वो पुद्गल परावर्तन ही असंख्यात हुए, अनंत हो जाए तब क्षेत्र परावर्तन की बात आ जाएगी। असंख्यात वो भी अवली का असंख्यात और भाग वाला असंख्यात है, बहुत छोटा असंख्यात है। शुरू तो हो गए, जैसे हमारे सब कांटे एक साथ हमने घड़ी चालू कर दी, शुरुआत हो गई, पर वो सेकंड कांटे ने बहुत सारे परावर्तन पूरे किए, तब जाके वो मिनट कांटा स्लोली चला, फिर घंटे के लिए और स्लोली। हाँ वैसे हम चौथा कांटा नहीं, पर वो घड़ी में वो डेट भी बदलती है ना, वो तो 24 घंटे में। अब कोई साल भर का कोई कांटा होता तो साल में एक बार बदलेगा। कैलेंडर उसमें होता है, आपके मोबाइल में भी होता है ना। हाँ देखो, तप कर्म के लिए क्या करना है अंतर, नपुसक वेद के साथ संयम दोनों ओर धारण करना चाहिए, बस इतना ही। संयम धारण करने के लिए उसको मनुष्य मिलाना, बाकी बीच में अभी तप कर्म कहो या क्रिया कर्म कहो, समय दृष्टि है तो अर्ध पुद्गल परावर्तन से ज्यादा नहीं होगा, इस तरह से लेना। और अर्ध पुद्गल परावर्तन में मोक्ष जाने वाला है, नपुसक वेदी भी मोक्ष तो जा ही सकता है, यानी उस भव में अवेदी होकर जा ही सकता है, उसके के जाने में कोई बाधा नहीं है, इसलिए दोनों ओर उसके नपुसक वेदी बनाना। देखो अभी यहाँ बताएंगे उपार्ध ने अर्ध के नजीक समीप वाला, यानी कुछ कम अर्ध पुद्गल परिवर्तन। यथा एक अनादि मिथ्या दृष्टि जीव, अनादि इसलिए लिया है क्योंकि उसके अर्ध पुद्गल परावर्तन घटित करना है, वो अंतर मैक्सिमम बढ़ा है ना, तो इसलिए अनादि वाला लेना। पहली बार उपशम सम्यक्त के साथ संयम लिया तप कर्म के लिए, और ऑर्डिनरी क्रिया कर्म के लिए केवल उसने उपशम सम्यक्त प्राप्त किया, ऐसा कह सकते हैं। एक अनादि मिथ्या दृष्टि जीव नपुसक वेद के साथ मनुष्यों में उत्पन्न हुआ, अनंतर अर्ध पुद्गल परिवर्तन के बाहर अंतर्मूर्त अधिक 8 वर्ष बिताकर, क्योंकि अर्ध पुद्गल परिवर्तन कब से गिनना है, सम्यक्त प्राप्ति के समय से, इसलिए उसके इसलिए बाहर लिया। अंतर्मूर्त अधिक 8 वर्ष बिताकर अर्ध पुद्गल परिवर्तन के प्रथम समय में उपशम सम्यक्त और संयम को एक साथ प्राप्त हुआ, इसके तपकर्म और क्रियाकर्म की आदि दिखाई दी। पुनः उपशम सम्यक्त के काल में 6 अवली काल शेष रहने पर सासादन गुणस्थान को प्राप्त होकर इन दोनों का अंतर किया, अनंतर अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल में सबसे जघन्य अंतर्मूर्त काल शेष रहने पर अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल में सबसे जघन्य अंतर्मूर्त काल शेष रहने पर तीनों ही कर्णों को करके उपशम सम्यक्त और संयम को प्राप्त हुआ, तपकर्म और क्रियाकर्म का अंतर प्राप्त हो गया। क्रियाकर्म का भी इतना ही उत्कृष्ट अंतर लेने, क्योंकि बाद में कम काल रखना है इसलिए, पर पहले भव में 8 वर्ष की कोई कंडीशन जरूरी नहीं है, कुछ भी हो तो वो पहले चला गया ना, जब से सम्यक्त प्राप्त हुआ उसके बाद ही हम अंतर गिनेंगे। तो जब कभी संपुसक वेदी ने जिस किसी काल में उसने लिखा है, ठीक है, अर्लीस्ट वो 8 वर्ष में कर सकता है, वहां से स्टार्ट करेंगे। और मनुष्य इसलिए लिया क्योंकि संयम में लेना है उसको, और अर्लीस्ट प्राप्त करने की जरूरी नहीं है, ये मैं कहना चाहती हूँ, नहीं समझे, जब कभी प्राप्त करना है ना तब से हमको अर्ध पुद्गल गिनना है, इसलिए वो भव के पहले ही शुरुआत में ही होना चाहिए, ऐसी भी कंडीशन नहीं है। हाँ, बाहर ही रखा है उन्होंने, पर 8 वर्ष लिखने की भी जरूरत नहीं थी, जब कभी प्राप्त किया वहां से गिनना है हमको। उन्होंने लिखा है ना पुद्गल के बाहर, वो तो अर्ध पुद्गल परिवर्तन के बाहर अंतर्मूर्त अधिक 8 वर्ष बिताकर, ऐसा लिखा है। हाँ? नहीं नहीं, मनुष्य की अपेक्षा बतानी है, परंतु 8 वर्ष के 50 वर्ष भी बीत जावे तो वहां से हमको स्टार्ट करना है, समझ में ना मैं क्या कहना चाहती हूँ। हाँ, वो उस समय से 50 वर्ष में उसने प्राप्त किया उपशम सम्यक और संयम, तो उस समय से हमको अर्ध पुद्गल गिनना है। अंत में जो छोड़ना है वो तो छोड़ना है सबके लिए, वो अंतर्मूर्त सबका मिलकर अंतर्मूर्त छोड़ना है लास्ट में, तो ये बताएंगे अभी। तपकर्म और क्रियाकर्म का अंतर हुआ, मिला 6 लाइन। अनंतर अभी वो देखो, वो औपशमिक इतने लंबे काल के बाद उसने सम्यक तो प्राप्त किया, संयम औपशमिक हुआ, अभी उसको अनंत अनुबंधी की विसर्जना करना है, क्षायिक करना है, क्षपक श्रेणी चढ़ना है और मोक्ष जाना है, सब मिलकर सब जितने अंतर्मुहूर्त लगेंगे उतने, हाँ अनंतर देखो ना, पहले पहले उपशम सम्यक्त्व का एक अंतर्मुहूर्त लेना, उपशम सम्यक्त्व संयम एक साथ हुआ ना, फिर अनंतानुबंधी की विसर्जना की, अंतर के लिए पहला एक ही अंतर्मुहूर्त गिनना, जिस समय उसने सम्यक्त्व प्राप्त किया उस समय से लेकर अर्धपुद्गल परावर्तन है, तो अंतर्मुहूर्त वहां कब शुरू हुआ, जब तप कर्म से नीचे आया तब, तो वो अंतर्मुहूर्त उसको अर्ध में से माइनस करना पड़े, अर्ध पुद्गल परिवर्तन में से पहला एक अंतर्मूर्त उपशम सम्यक्त्व का, फिर यहाँ पर लास्ट में जब उसने उपशम सम्यक्त्व प्राप्त किया, फिर अनंतानुबंधी की विसंजना करके वेदक सम्यक्त्व को प्राप्त हुआ, और बीच बीच में भी विश्राम के भी अंतर्मूर्त गिने नहीं उन्होंने, अनंतर अंतर्मूर्त में क्षायिक समय दृष्टि हो गया, अनंतर प्रमत्त और अप्रमत्त गुण स्थानों के हजारों परावर्तन करके अपूर्व क्षपक, अनिवृत्ति क्षपक, सूक्ष्म सांप्राय क्षपक, क्षीण मोह, संयोग केवली और अयोग केवली होता हुआ, ये 11 हुआ, कितना हुआ, सिद्ध हो गया। विसंयोजन करके वेदक समय को उसके वेदक संयोग, क्योंकि हर जगह बीच बीच में अंतर्मुहूर्त जाते हैं, एक्चुअली विश्राम के जाते हैं। देखो देखो, अनंतानुबंधी की विसंयोजना कौन करता है, वेदक समय दृष्टि, लास्ट में उपशम समय तो प्राप्त किया, अर्लीएस्ट करते तो क्रियाकर्म का अंतर कम हो जाता, हमको मैक्सिमम लंबा बढ़ाना है, और क्रियाकर्म तो समय दर्शन होने पर भी अंतर समाप्त होता, पर उपार्ध पुद्गल परावर्तन से बाकी का फिर संयम प्राप्त कराना है, क्षायिक प्राप्त करना है, तो क्षायिक के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले अनंतानुबंधी की विसर्जना, वो कैसे करेगा, क्योंकि उपशम सम्यक्त्व के काल में तो अनंतानुबंधी तो अप्रशस्त उपशम है उसका, फिर वो वेदक सम्यक्त्व होता है, फिर अनंतानुबंधी की विसर्जना करता है, फिर उसमें विश्राम लेता है, फिर क्षायिक करता है, उसमें बीच बीच में एक एक अंतर्मुहूर्त चला जाता है, क्या सब कर सकते हैं, परंतु यहाँ तो उसके देखो, वहां तो अन्य वेद में भी भेजो आपको ही बात नहीं है, अर्ध पुद्गल परावर्तन इसको मोक्ष दिलाना है, वहां मोक्ष की कंडीशन नहीं थी, वहां वो वेद बदलते तो वो हो जाता, नपुसक वेद में मैक्सिमम काल बिता सकता है इसलिए। तो इस प्रकार नपुसक वेद वाले के तप कर्म और क्रिया कर्म का 12 अंतर्मूर्त कम अर्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण उत्कृष्ट अंतरकाल होता है। अब अपगत वेद वाले जीवों के, अपगत वेद वाला होता ही अंतर्मूर्तक है, है ना? नाना जीवों की अपेक्षा अपगत में अंतर कितना पड़ेगा, नहीं, क्योंकि अपगत वेद वाली वो 13वें गुणस्थान हमेशा ही रहेंगे, है? तो अपगत वेद वाले जीवों के प्रयोग कर्म, समवदान कर्म, इरियापत कर्म और तप कर्म का नाना जीवों और एक जीव की अपेक्षा अंतरकाल नहीं है। एक जीव भी जब तक अपगत वेदी है तब तक ये रुक जाए और फिर चालू हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। आप कहेंगे इरियापद में 2 बार श्रेणी चढ़ाओ ना, तो 2 बार चढ़ाने में नीचे आएगा तो सवेदी हो जाएगा, अपगत वेद वाली मार्गणा कायम नहीं रहेगी। अब अधक कर्म का अंतरकाल कितना है, अपगत वेद में अधक कर्म का नाना जीवों की अपेक्षा अंतरकाल नहीं है, क्योंकि अपगत वेद वाले हमेशा रहेंगे। एक जीव की अपेक्षा जगन्य अंतरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अंतरकाल कुछ कम पूर्व कोटि प्रमाण है। वे कुछ कम पूर्वकोटि केवली की अपेक्षा है। यथा एक देव या नारकी क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव पूर्व कोटि की आयु वाले मनुष्यों में उत्पन्न हुआ, अधकर्म का अंतर बता रहे। अनंतर गर्भ से लेकर 8 वर्ष और अंतर्मूर्त के बाद अप्रमत्त भाव से संयम को प्राप्त हुआ, अनंतर प्रमत्त हुआ। अनंतर प्रमत्त और अप्रमत्त गुण स्थानों के हजारों परावर्तन करके अपूर्व करण और अनिवृत्तिकरण गुण स्थान के संख्यात भाग जाने पर अपगत वेदी वाला करना है ना उसको अर्लिएस्ट, आपका हो जाएगा तो बताना फिर हम चालू करेंगे। मिला? देखो ये पीछे के पेज पर लाना, फिर 156 पेज पर दोबारा पढ़ते हैं। यहाँ हमारी मार्गणा कौन सी है? अपगत वेदी, और अपगत वेदी के रहते हुए अधक कर्म लेना है। वो जीव वही का वही है, वो जो गर्भ में आया उसने ग्रहण किया तभी की बात नहीं लेनी है। अपगत वेद होने पर उसने औदारिक शरीर के परमाणु ग्रहण किए उसकी बात है, इसलिए अभी क्या लिया उसको, वो सम्यक्त्व के क्षायिक सम्यक्त्व के साथ मनुष्यों में आया है। 8 वर्ष के बाद वो संयम को प्राप्त हुआ, क्योंकि सम्यक्त्व के साथ तो था ही था, अब संयम धारण किया। फिर हजारों बार उसने छठा सातवा किया, फिर श्रेणी चढ़ा, यानी क्षपक श्रेणी चढ़ा। तो फिर लास्ट लाइन, हजारों परावर्तन करके अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण गुण स्थान के संख्यात भाग जाने पर, अनिवृत्तिकरण का संख्यात भाग गए उसके, अश्वकर्ण करण का कर्ता होकर, अश्वकर्ण करण कब होता है याद है? अपगत वेदी होने पर होता है ना, अपगत का पहला समय है ना वो अश्वकर्ण। हाँ, अश्वकर्ण के साथ कृष्टिकरण वगैरह होता है, यानी वो तो अंतर के बाद होता है, पहले अंतर करता है और बाद में ये सब शुरू। तो उसके प्रथम समय में जो औदारिक शरीर के परमाणु, परमाणु शब्द डालो क्योंकि ऊपर लिखा है ना पहले ओरालिय शरीर परमाणु, यानी औदारिक शरीर के परमाणु शब्द डालो, निर्जीर्ण हुए उनके दूसरे समय में अधक कर्म की आदि होती है। ये तो समझ में आई ना। अनंतर तीसरे समय से लेकर अकर्म भाव को प्राप्त हुए उन परमाणुओं का अंतर काल होता है। अभी पहले वो तो औदारिक शरीर रूप से थे, अभी वो बिखर गए, वो औदारिक शरीर पना नहीं रहा, उनको फिर वो औदारिक शरीर रूप से जब ग्रहण करेगा तब तब की बात है। जो अंतरकाल शुरू, जो पूर्व कोटि के कोटि में अयोगी मात्र काल शेष रहने तक रहता है, अनंतर संयोगी के अंतिम समय में कर, अंतिम उन्हीं समय में ने, अंतिम समय में उन्हीं नौकर्म स्कंधों के बंध को प्राप्त होने पर, परमाणु वही है पर वो अभी वो तो परम औदारिक रूप से ग्रहण कर रहा है, अधक कर्म का अंतरकाल प्राप्त होता है। इस प्रकार यानी अपगत वेदी के पहले समय में ग्रहण किए उसने, फिर छोड़े, तो पहले 2 समय और यहाँ का 1 समय, 3 समय कम करना। गर्भ से लेकर 8 वर्ष और 6 अंतर्मूर्त कम एक पूर्व कोटि अधक कर्म का उत्कृष्ट अंतरकाल होता है। 6 अंतर्मूर्त लिया क्योंकि उसको अपगत वेद होने में 6 अंतर्मूर्त लगे। 8 वर्ष हुआ, बाद में संयम धारण किया, छठे सातवें गुण स्थान में अप एंड डाउन हुआ, फिर अपूर्व कर्ण अनिवृत्ति हुआ, संख्यात बहुभाग गया तो उसमें भी अंतर्मूर्त गया, तो फिर अपगत वेदी होकर फिर उसने ग्रहण किए, फिर छोड़े, इस तरह से। और लास्ट वाला भी अयोगी का छोड़ना है, उसके पहले समय में ग्रहण करना है। अब कषाय मार्गणा की बात है। हमने तीन वेद वाले और अपगत वेदी वाले देखे। अपगत वेद वाली की बात समझ में आई? हाँ लक्ष्मी जी, अभी 10 मिनट रहे। अब कषाय मार्गणा का उत्कृष्ट काल कितना होगा? क्योंकि क्रोध मान माया लोग पलटते रहेंगे। कषाय है, परंतु उसमें हम कषाय मार्गणा में भेद है क्रोध वाले, मान वाले, माया वाले और लोभ वाले। हाँ, अकषाय जीवों के वो लगातार रहेंगे एक जीव की अपेक्षा। अकषाय मार्गणा में वो कुछ कम पूर्व कोटि तक रह सकेंगे। कषाय मार्ग का मार्गणा के अनुवाद से चारों कषायों का कथन मनोयोगियों के समान है, यानी वो प्रयोग कर्म समवदान का अंतर नहीं है, अधकर्म का अंतर करना है तो अधकर्म का अंतर, एक तो मिनिमम अंतर एक समय और तीन समय का अंतर मूर्त, ये सभी कषायों में यही लागू होगा। तो कषाय मार्गणा में अभी मेरा प्रश्न है लक्ष्मी जी आपसे, क्रिया कर्म का अंतर कितना होगा? क्रिया कर्म का अंतर नहीं होगा, क्योंकि कोई एक कषाय का काल जो है उतने काल में मिथ्यात्व में जाना, वापस सम्यक तो प्राप्त करना, ये बात नहीं होगी। हाँ, अभी अकषाय वालों का कथन अपगत वेद वालों के समान है। इतनी विशेषता है कि क्षीण कषाय के प्रथम समय में अभी जो अधक कर्म का अंतर कैसे लेंगे, वहां अपगत वेदी बनाया था इसलिए अनिवृत्तिकरण का संख्यात बहुभा गया था, और यहाँ अकषाय बनाने के लिए क्षीण कषाय का पहले समय में जो औदारिक परमाणु ग्रहण किए थे उसको संयोग केवली के अंतिम समय में फिर ग्रहण कराना। तो यहाँ क्या विशेषता है, क्षीण कषाय के प्रथम समय में जो औदारिक शरीर के नौकर्म परमाणु निर्जीर्ण हुए, वो पहले समय में निर्जीर्ण हुए इसलिए वह तीन समय नहीं लिया और निर्जीर्ण किया, ऐसा नहीं किया। उनके दूसरे समय में अधक कर्म की आदि करना चाहिए। इसी प्रकार केवल ज्ञान और केवल दर्शन वालों के भी कहना चाहिए। अब केवल ज्ञान कहने से 13वें गुणस्थान के पहले समय में वह जो ग्रहण किया था। इतनी विशेषता है कि सहयोगी के प्रथम समय में निर्जीर्ण हुए औदारिक शरीर के परमाणुओं के दूसरे समय में अधक कर्म की आदि करना चाहिए और फिर अंतिम समय में फिर ग्रहण किए उन्होंने। अब ज्ञान मार्गणा के अनुवाद से तो मेरा प्रश्न ये अकषाय वाले है ना, तो इरियापत का अंतर होगा कि नहीं होगा? हाँ, 11वें में अंतर किया, फिर क्या हुआ? फिर कषाई हो गया। अकषाई रहते हुए फिर ऊपर उल्टा नहीं चढ़ेगा, ख्याल में आए ना, यानी वो कषाई हो जाता है बीच में। तो 12वें वाले को लेना और एक बार अकषाई हुआ तो अकषाई रहेगा, बाद में अंतर नहीं होगा उसका। इसलिए जैसे हमने अपगत में देखा था ना, प्रयोग समवदान इरियापत और तप कर्म का तो एक जीव की अपेक्षा भी अंतर नहीं होता। किसमें मरण हुआ तो कषाय हो गया, अकषाय मार्गणा चालू नहीं रहेगी। देखो उसमें काल घटित होता है पर अंतर घटित नहीं होगा। अब ज्ञान मार्गणा के अनुवाद से मत्य ज्ञानी और श्रुता ज्ञानी जीवों का कथन सामान्य तिरियंचों के समान है। सामान्य तिरियंचों के समान है ने उसका जो काल लेना है, प्रयोग कर्म समवदान का तो अंतर नहीं होगा, अधक कर्म का अंतर लेना है तो कितना होगा? हाँ, मैक्सिमम अंतर एक समय का अंतर तो जघन्य होगा, बिल्कुल मति अज्ञानी असंख्यात पुद्गल परावर्तन होगा। अब कहते इतनी विशेषता है कि इनके क्रिया कर्म नहीं होता, क्यों नहीं होता? यह तो मिथ्या दृष्टि है। इसी प्रकार अभव्य सिद्ध, मिथ्या दृष्टि और असंगियों के भी कहना चाहिए, क्योंकि उनमें कोई कथन में कोई डिफरेंस नहीं है। इसी प्रकार विभंग ज्ञानियों के भी जानना चाहिए। अभी विभंग ज्ञानी तो असंख्यात पुद्गल परावर्तन तक तो नहीं रहेंगे। इतनी विशेषता है कि अधः कर्म का एक युग की अपेक्षा जघन्य अंतरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अंतरकाल तीन समय कम अंतर्मूर्त है। देखो ये बात हम महाबंध में हमें ख्याल में आई, यहाँ इतनी ख्याल में नहीं आई थी। मैं फिर से बताना चाहती हूँ क्या क्या कहना चाहते हैं। विभंग के साथ अधः कर्म किसको होगा? हाँ, और उसमें अंतर कितना काल बताया? अंतर्मूर्त। ये घटित हुआ ना यहाँ पर ये विशेष हमें ख्याल में आया था महाबंध में, क्योंकि ये विभंग ज्ञान के होते हुए देवायु और नरकायु दो बार नहीं बांधी जाती, देवायु का अंतर नहीं होता, ऐसा वहां देखा था हमने। विभंग ज्ञानी देवायु नरकायु बांध सकता है, उन एक बार बांधी फिर बीच में गैप होगा फिर उसने अंतर्मूर्त में बांधी, ऐसा वहां नहीं हो सकता, उससे हमने वो डिराइव किया था। और यहाँ तो बिल्कुल लिखा ही है ना, अधः कर्म का अंतर अंतर्मूर्त होता है विभंग ज्ञानी में। अधः कर्म वो तो मनुष्य तीरंचो का ही होगा, उत्कृष्ट अंतर तीन समय कम अंतर्मूर्त। देयरफॉर यानी उससे हम डिराइव करते हैं मनुष्य और तीरंचों का विभंग ज्ञान अंतर्मूर्त से अधिक नहीं टिकता। यथा एक तीरंच या मनुष्य उपशम सम्यक दृष्टि जीव उपशम सम्यक के काल में छह अवधि काल शेष रहने पर सासादन और विभंग ज्ञान को एक साथ प्राप्त हुआ, वहां विभंग ज्ञान के उत्पन्न होने के प्रथम समय में जो औदारिक शरीर के परमाणु निर्जीर्ण हुए उनके दूसरे समय में अधः कर्म की आदि होती है, और तीसरे समय से लेकर सासादन का सब काल बिताकर मिथ्या दृष्टि के विभंग ज्ञान के सर्वोत्कृष्ट काल के द्विचरम समय के प्राप्त होने तक अंतर होता है। अंतिम समय में तो उसने ग्रहण किया तो अंतर समाप्त हुआ, अनंतर विभंग ज्ञान के काल के अंतिम समय में उन्हीं पूर्व निर्जीर्ण औदारिक शरीर के नौकर्म स्कंधों के बंध को प्राप्त होने पर अधः कर्म का उत्कृष्ट अंतर होता है। इस प्रकार तीन समय कम छह आवली काल और मिथ्या दृष्टि के सर्वोत्कृष्ट विभंग ज्ञान का काल, ये दोनों मिलकर अधः कर्म का उत्कृष्ट अंतरकाल होता है। यानी मिथ्या दृष्टि से भी वो सासाधन का मिला हुआ काल वो मिलकर अधिक होता है, इसलिए उन्होंने इस तरह से ले लिया। ये बात ख्याल में आई? यानी सूक्ष्मता कितनी है ना, यानी कि वो औपशमिक सम्यक्तों में से सासाधन में आया है और सासाधन वहां तो समय दृष्टि था, उसके विभंग ज्ञान उत्पन्न हुआ वहां पर। मनुष्य में कोई नियम नहीं उत्पन्न होने का, पर ऐसा जीव लिया कि जिसके वो विभंग ज्ञान उत्पन्न हुआ, तो वहां सासाधन के साथ तो विभंग में रहा, फिर मिथ्यात्व में रहकर विभंग का उत्कृष्ट काल लिया और फिर अंतिम समय में फिर उसने ग्रहण किया। अब रुकेंगे, अभी एक दो समय में नई मार्गणा होती है ना सम्यक ज्ञानी की। हाँ, उत्कृष्ट अंतर विभंग ज्ञान में रहते हुए अधः कर्म का उत्कृष्ट अंतर। अगर मैं पूछूं विभंग ज्ञान में रहते हुए और दूसरे कोई होता ही नहीं, क्रियाकर्म तो उनके होता ही नहीं है, हाँ ये तीन ही हो गए ना उसमें। नहीं नहीं नहीं, उसमें आते ही उसने पहले समय ही निर्जीर्ण किया, ऐसा ही लिया, तीन समय भी नहीं लेना उसमें, एक समय में ही निर्जीर्ण किया और अंतिम समय में ग्रहण किया, वो छह अवली में से वो तीन समय कम कर दिया उसे। देखो तीन समय कैसे लेना, पहले दो समय और लास्ट का एक समय, इस तरह बीच वाला अंतर कहलाएगा। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो सोवाणी मस्तक नम सदा देत हो नो। मैं